यावर रामचंद्र आपने वैराग की बात के लिए कहा, तो वैराग की बात तो बहुत ही बढ़िया है। और वैराग जो है सभी साधना के वहाँ वैराग की आवश्यकता है। वैराग के बिना न भक्ति को साधन सिद्ध कर, न ज्ञान को, न योग को। वैराग एक बहुत उच्च कोटि की चीज है। पूर्व के ऋषि लोग वैराग के वास्ते ही समझो कि वन में बास किया करते थे, और हम लोग जो यहाँ आते हैं वो वैराग के लिए आते हैं। नहीं तो अपना समझो कि गीता भवन का जो हॉल है उसमें तो 11 आदमी बैठो, 8 आदमी बैठो, और एक प्रकार से बहुत ही आराम की जगह है। तो उस आराम को छोड़ करके जंगल में क्यों आते वैराग के लिए? कि यहाँ वैराग लहराता है। वैराग की एक प्रकार से समझो कि इस वन में जाकर प्रवेश करो कि मानो कोई वैराग के राज के वहाँ आ गया, और ऊपर के पहाड़ा में चले जाओ जंगल के बीच के वहाँ, तो समझो कि वहाँ वैराग ही वैराग परिपूर्ण हो रहा है। कोई समय में वन में बैठते हैं तो चारों तरफ वृक्ष के सौर कोई वस्तु नहीं दिखती, गंगा जी का भी दर्शन नहीं होता। और यहाँ भला गंगा जी तो दिखती है, तो गंगा जी का जो दर्शन है इससे भी वैराग उत्पन्न होता है। और पहाड़ का गुफा का जो दर्शन है इससे भी वैराग याद आता है। और जंगल तो एक प्रकार से वैराग की लहरा उत्पन्न कर ही रहा है। तो ऋषि लोग जो है, मुनि लोग जो है, वे पहाड़ों की गुफा में रहते थे। पहाड़ माने गिरी, गिरी गुहा। गिरी गुहा को मतलब है पहाड़ों की गुफा। और यह वन में रहते, वन का नाम है आरण। तो आरण्यवासी कहते उसके वनवासी, आरण्यवासी कहते होते वनवासी कहते। तो वन के माँ जो वास करे वो वनवासी। तो अपने भी थोड़ा दिन के लिए वनवासी बन जाओ, अठाकर चलो भाई वनवासी बनो। शहर के वासी तो सदा ही है, किन्तु थोड़ा दिन वनवासी बनो। तो यहाँ देख लो प्रत्यक्ष के बीच के वहाँ आपने वैराग का आपने साज है, सो प्रत्यक्ष है। चित्त के वहां स्वाभाविक ही वैराग हो जाता है। वैरागवान जो पुरुष होते हैं उनके तो दर्शन से, उनके तो समरण से वैराग हो जाता है। वैरागवान पुरुष जिस मार्ग से चलता है वो वैराग को वितीर्ण करता हुआ चलता है। जैसे कोई भाई समझो कि इत्र लगा करके चलता है, किसी के पास में किस्तूरी है और वो चलता है, तो वह किस्तूरी की जो सुगंध है उसका आपने वितीर्ण करता हुए चले, इत्र का भी वितीर्ण करता हुए चले। तो जैसे इत्र और किस्तूरी कपूर आदि के जो परमाणु जो है सुगंधी के, तो सुगंधी के परमाणु एक प्रकार से फैल जाते हैं। तो इससे भी और ज्यादा समझो कि परमाणु होते हैं वैराग की। तेरे की जो मुद्रा है उससे भी समझो कि आपने वैराग का वितीर्ण होता रहता है। जो वृत्त जो महात्मा जो पुरुष होते हैं, बीत राग जो पुरुष, जिनकी राग बीत गई, जिनमें राग नहीं है, वैरागवान। जैसे आजकल कोई जाति हो कहते हैं कि वृत्त पुरुष है अपने वैरागवान है। साधु को आजकल कई एक कौम को वैरागी साधु कहते हैं, वैरागी, किंतु वो तो एक समझो कि बेस का नाम वैराग है, असली वैराग नहीं है। बाहर का जो स्वांग वैराग का तो समझो कि चाय से ही बना लेता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। असली वैराग होना चाहिए कि जो भीतर के माँ वैराग हो। संसार के ऐसे जो विषय भोगों को जो ठुकरा देता है मन से, वो सच्चा वैरागवान है। वैरागवान की अपरीक्षा है कि उनके दर्शन से दूसरों को वैराग पैदा हो जाता है। मंगलनाथ जी महाराज थे तो उनके नेत्रों में और उनके एक प्रकार से वृत्ति के वहां वैराग रहता था। वे चलते थे तो उस समय उनके वैराग झलकता था उनके नेत्र से, जैसे स्वयं ज्योति जी थे, बड़े वृक्ष पुरुष थे। हमने बहुत से वृक्ष पुरुषों के दर्शन किए हैं। एक थैलदास जी साधु थे, एक प्रकार से बड़े वृक्ष पुरुष कमल घाटी में रहते थे, बूढ़े आदमी, और वहां तो बहुत से वृक्ष रहते थे। वो तो वृक्षों की टोली टोली माया करती थी। संतों की जीवन मुक्त जी नाम उनका जीवन मुक्त जी, और उन वृक्षों के बीच के वहां एक का नाम आत्मा राम जी था, आत्मानंद, और एक का नाम हीरानंद था। ये सब बहुत वृक्ष पुरुष थे। सच्चिदानंद बहुत बूढ़े साधु, बड़े वृक्ष और पंडित थे। गुरुमुख दास जी वृक्षों की टोली के वहां आदमी थे। सब प्राय बहुत से मर गए, चले गए एक प्रकार से। हमने कई वृक्षों के दर्शन किए हैं। एक हरिहरनाथ जी थे और एक सफेद कपड़ा के मूला सिंह जी थे, भक्त सिंह जी थे। ये पुरानी झाड़ी में रहते थे। अब ऐसे वृक्ष संसार में बहुत कम देखने में आते हैं। पूर्व के जमाने में शास्त्रों में तो उच्च कोटि के वृक्षों की कथा हम पढ़ते हैं। कथा पढ़ने के समय के बीच में स्वाभाविक ही चित्त के वहां मनुष्य के वैराग हो जाता है। जैसे भर्तृहरि का वैराग शतक है और योग दर्शन का वैराग प्रकरण है, तो इसके पढ़ने से चित्त के वहां वैराग उत्पन्न होता है। और वृत्त पुरुषों की कथा पढ़ने से वैराग होता है, उनका दर्शन करने से, उनको याद करने से चित्त में वैराग उत्पन्न हो जाता है। मैंने 1956 के साल के वहां आरंभ के बीच के वहां मंगलनाथ जी के दर्शन चूरू के वहां लोहे की बगीचे के ऊपर किए थे। उस वक्त के वहां इनके चेहरे के ऊपर समझो कि वैराग छलकता था। दर्शन करने के लिए मैं गया था, हमारे पिताजी साथ थे और हमारे गुरुजी गणेश जी भी साथ में थे और श्री राम जी मास्टर थे। उस वैराग की मुद्रा से उन्होंने जो बात की वो तुम्हारे याद नहीं रही, क्योंकि उनको 56 वर्ष हो गए। हम उस वक्त में बालक ही थे, हमारी 14 साल की उम्र थी, इसलिए वो बातें याद नहीं रही, किंतु वो उनकी मुद्रा याद रही, उनका चेहरा, उनका वैराग उसे की हमारे हृदय में छाप पड़ी। बहुत दफा हमारे हृदय में उससे ये बात पैदा होती कि हम भी वृक्ष बने, हम भी एक प्रकार से सच्चे वृक्ष बने। कभी तो ये होता कि घरवार को छोड़ करके और जंगल को चले जाए। हमारे साथी थे भाई हनुमान प्रसाद पोदार, नहीं हनुमान प्रसाद गोविंद का, वे कभी कभी कहते बैराग की बात को, सो बोले चलो अपने जंगल में चलो। अरे जंगल में तो चले, किन्तु तुम ठहरोगे नहीं भैया, हमारे पल्ले बांध देंगे, तुम वापिस लौटे आओगे। अपना खूब बैराग अब हृदय में बढ़ाना चाहिए। अभी तो उस वक्त के बीच के वहां समय समय पर जो बैराग की बात होती थी तो एकदम बैराग का भाव जागृत हो जाता था। बैराग की बातों में इतना एक प्रकार से प्रभाव है कि एक दफे तो समझो कि जो व्यसन जो खानगी उसके भी चित्त में वैराग हो जाते। हम तो समय के ऊपर जब मंगलनाथ जी को याद कर लेते हैं तो हमारे को बैराग का स्वरूप याद आ जाता है। और समझो कि सुखदेव जी महाराज को याद कर रहे थे, सुखदेव जी का जैसा चित्र आजकल संसार में मिलता है वो हमारे को पसंद नहीं है। हमारे हृदय के बीच के माँ सुखदेव जी का जो चित्र है कि हम जैसे सुखदेव जी को समझते हैं वैसा चित्र हम नहीं देखते। वो चित्र एकदम वैराग से परिपूर्ण। उपाय क्या करें, हम चित्रकार तो नहीं तो कैसे बनाऊं। हमारे दिल के बीच के हमारे के भी वैराग भगवान का चित्र कैसा होना चाहिए। हमने बहुत वृक्षों के दर्शन किए। सुखदेव जी की तो बात है क्या, उनका तो नाम उच्चारण करने से चित्त में वैराग उत्पन्न हो जाता है। सुखदेव जी जिस मार्ग से चलते थे मानो एक प्रकार से वैराग के परमाणु फैला देते थे। जैसे कोई प्लेग का बीमार और प्लेग के परमाणुओं को फैला देता है, लोगों को कुछ दिखता नहीं, पास में रहने वालों को प्लेग हो जाती है। तो इसी प्रकार से वैरागवान पुरुषों के पास में रहने से वैराग पैदा हो जाए, कुछ भी नहीं। तो वो सच्चा वैराग है। महाभारत के शांति पर्व कथा आती है कि जिस समय में वेदव्यास जी के पुत्र जो सुखदेव जी है, ये अपने पिता के पास गए और पूछा कि आप मुझको उपदेश करें। तो उन्होंने कहा कि मेरे से भी बढ़कर के राजा जनक है, जनक उनके पास तुम जाओ, वे तुम्हारे को खूब अच्छा उपदेश कर सकते, किंतु जाना पैदल, तुम योग के द्वारा आकाश मार्ग से नहीं जाना, गुरुजनों के पास में जाना तो बहुत सादगी से और नम्रता से जाना चाहिए। तो राजा जनक बड़े उच्चकोटि के महापुरुष हैं और उनके पास जाकर तुम शिक्षा ले। तो वे गए, राजा जनक के यहाँ खबर भेजी कि सुखदेव जी महाराज पधारे, वेदव्यास के पुत्र आपसे शिक्षा लेने के लिए आए। बहुत ठीक है, वे रावल के वहां जाकर के, और जवान जो औरता है बहुत सुंदर है और जिनकी 16 वर्ष की उम्र के प्रकार से, ऐसी एक औरता, उनसे जाकर कहा कि मैं तुम्हारे पास में वहां सुखदेव जी आवे, तो उनको एक प्रकार से अपने शरीर के मालिश करना, उठना मालिश करना, स्नान कराना, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाना, खूब एक प्रकार से उनका श्रृंगार कर, और उसके माँ ख्याल करके देखो कि आसक्ति के विषय में परीक्षा करो। तो खूब सुंदर स्त्रियां हंसती हुई और सुन लो की कटाक्ष करने वाली, खूब एक मनुष्य को मोहित करने वाली ऐसी स्त्रियां, और उनके शरीर की उठना लगा है, कोई हथांगे कोई पैरांगे, फिर खूब स्नान कराया मल मल करके, स्नान करा करके फिर बढ़िया वस्त्र पहनाए। तो जैसे माँ जो अपने 2-3 वर्ष के लड़के को जैसे स्नान कर रहा, वो भी रोए और हाथ पग तड़फ है, पर तो कुछ नहीं, एक समझो की या कोई पाषाण की मूर्ति हुए, उसको चाहे स्नान कराओ चाहे वस्त्र पहनाओ, जैसे कोई लकवाड़ा आदमी हो गए, उसका हाथ यहाँ धर दे तो यहाँ पड़ा रहे, यहाँ धर दे तो वे एक प्रकार से कहीं हटके लगाते है, तो वही अपने हाथ को थामे, अपने छोड़ दे, अपने शरीर का हाथ लगावे, अपनी तरफ से ही उसके ऊपर खूब एक प्रकार से चेष्टा करी, किंतु उसमें काम की गंध भी नहीं, अच्छी तरह से कपड़ा और सब पराया, खूब एकदम अपने खूब सेवा करी, किंतु उसके तो ऐसा है कि जैसे कोई पाषाण की मूर्ति हो, जैसे कोई अपने कपड़े का पुतला हो, और मैंने जैसे करे वैसे कर दो, सुखदेव जी की तरफ से कोई भी चेष्टा नहीं हुई। ये देख करके कि वो सारी खबर राजा को पहुंचा कि ये बात है, राजा ने सोचा कि इसके ऊपर कुछ असर हो, बोला क्या असर हो, कुछ भी नहीं, जोक होती नहीं अपने जोक, वो खून पर चढ़ दिए, क्योंकि पत्थर पर थोड़ी चढ़े, जोग ने पत्थर पर चढ़ावे तो पत्थर पर क्या करे जो, और खून हो तो उस पर चढ़ जावे, तो उनके तो रोम रोम के बीच के वहां बैराग भरा हुआ है, ऊपर से भरी हुई है, वो तो एक प्रकार से देखते नहीं किसी को, नजर से उठा करके छूते नहीं, एक प्रकार से व्यक्त एकदम नेत्रों के वहां बैराग वास करता है। तो फिर राजा जनक ने उनको अपने पास बुलाया, आप क्या चाहे, बोले मैं आपसे ज्ञान सीखने के वास्ते। बोले महाराज आप क्या ज्ञान सीखोगे, आप तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हो, बल्कि एक प्रकार से फिर तो आपको सीखना कुछ भी नहीं, आप सीख ऐसा के ही हो, आपके पिताजी ने मेरे पास इसीलिए भेजा है कि उनके वचनों पर विश्वास हो जाएगा बोल करके, और आप बड़े वृत्त महात्मा पुरुष हो, आपकी बड़ी ऊंची अवस्था है। तो दूसरे दिन के वहाँ योग वाशिष्ठ में तो ये लिखा कि फिर ऐसी बात है तो हमारे को जो शांति क्यों नहीं मिलती है, इसलिए नहीं मिलती है कि आप अपनी अवस्था को नीचे मान रखे, इसलिए आपको शांति नहीं मिलती, आप समझते हो कि उसके आगे और भी कुछ साधन करना है, अब आपको साधन सुधन कुछ भी नहीं करना, एकांत में जाकर के ध्यान लगाओ आप, ठीक है, जाकर ध्यान लगाया, समाधि ला दो, तो सब तैयारी तो थी, जैसे बिजली जब फिट हो जाती है तो फिर से हो जाती है, किसी करना धरना नहीं पड़ता, तो वहाँ बिजली फिर थी क्षण मात्र के बीच के वहां बस समाधि लग जाए उनके क्या। तो वे जो रास्ता चलते थे तो उनका चलना एक प्रकार से दूसरा ही था, वैरागवान पुरुषों का चलना भी एक अलौकिक होता है। एक समय के बीच के वहां बतला है कि सुखदेव जी जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज जा रहे हैं, एक जलाशय आ गया उस बरस से जहाँ स्नान कर रही थी, वेदव्यास जी को देख करके झट अपना अपना कपड़ा उठा कर पहनने लगी, शर्म करने लगी। वेदव्यास जी ने कहा कि मेरा लड़का अभी इधर में गया खूब जवान अवस्था के बीच में, उसको देख करके तुमने किसी ने भी शर्म नहीं की, लज्जा नहीं की, और मेरे को देख लज्जा करती हो, ये क्या बात। बोले महाराज आप भी महात्मा पुरुष हैं और आपका लड़का भी महात्मा है, किंतु इतना फर्क है कि आपको ये ज्ञान है कि स्त्रियां है, और आपके लड़के को ये ज्ञान नहीं है कि स्त्रियां या पुरुष है, पशु या मनुष्य, तो उसकी हम क्या शर्म करें। पशु भी तो रात दिन जाते हैं, हम तो ऐसा शर्म करते हैं। तो एक प्रकार से थी वेदव्यास जी के चित्त के ऊपर बड़ा असर पड़ा, छाप पड़ी, बोले वाह इनका कहना ठीक है, मुझको तो ज्ञान तो है ही ये स्त्रियां है, ये एक प्रकार से शर्म करती है। तो उनके चित्त के माँ बड़ा भारी बैराग था। एक समय के बीच के माँ राजा परीक्षित की सभा में जा रहे, रस्ते के बीच के माँ लड़के मिल गए, उन्होंने सोचा कि सीधी है ये पगला पागल समझ करके, और उसके ऊपर कोई कूड़ा डालता है, कोई पत्थर डालता है, कोई रेत डालता है, इस प्रकार से डालने लगे। डाले तो कोई परवाह नहीं, उनके शरीर पर बालों पर सब जगह कूड़ा करके पड़ा है, उनकी उसमें शोभा है क्योंकि वो तो व्रत है ना, वैराग के लिए तो शोभा है। ऋषित के यहाँ पहुंचे तो सब ऋषि लोग खड़े हुए देखकर उनको, उन्होंने पूछा एक प्रकार से राजा परीक्षित से कि क्या बात है, ये उम्र में सबसे छोटा दिखता है और तुम सब खड़े होकर इनका आदर करते हो, बात क्या है। बोले हम लोगों के बीच के मां गुण है सो बड़ा है, अवस्था का कोई मूल्य नहीं, गुणों में सबसे बढ़ करके है इसलिए हम लोग इनका आदर करते हैं। फिर सुखदेव जी के बैठने पर सब बैठे तो वहां पुष्पों की बौछार होने लगी, कूड़े करकट की जो बौछार है और पुष्पों की जो बौछार है उनके लिए तो दोनों ही समान है, दोनों कूड़े के समान है, वह पुष्प भी कूड़े के समान, पर वास्तव के वह कूड़ा ही कूड़ा करकट ही है। आज एक प्रकार से हम पुष्प लाते हैं और रखते हैं, रात भर रहते हैं, दूसरे दिन नौकरों के दे झाड़ू दो, झाड़ू देकर साफ करो, ये पुष्प पास जो पड़े हैं कूड़ा करकट है और क्या, इसको उभार कर साफ करो, तो दूसरे दिन तो अपने यहाँ ही कूड़ा करके तो जाता है, वो एक ही दिन के लिए थोड़ा समय के लिए रहता है उसका। तो वैरागवान जो पुरुष होते हैं उनकी अद्भुत बातें होती है। रात्रि के समय के वहाँ समझो गंगा किनारे कहीं या कोई मकान के वहाँ कई भाई लोग सो रहे हैं, उनमें कोई व्रत है और कोई शौकीन है, और सभी पदार्थ पड़े अपने वहाँ प्रातः काल यदि शीत पड़े तो अपनी इच्छा अनुसार वहाँ ओढ़ सकते हैं। वहाँ चट भी पड़ी है, दुशाला भी पड़ा है, कांबल भी पड़ी है, जो शौकीन जो है उसकी दृष्टि तो दुशाले पर जाएगी, वो तो उसकी तरफ हाथ डालेगा, और व्यक्त है उसके हाथ में कांबल आ गई तो चट आ गई, दुशाला हाथ भी आ जाता है उसको फिर देते है। आप हर एक भाई अपनी तरफ चार करके देखो, जैसे स्वामी जी है और इनको अपने कह रहे कि भी महाराज जी हम दुशाला ले हैं, ये आपके लिए जाए, आपको ये लेना ही होगा। तो स्वामी जी बोले भाई हमारे काम की चीज ये नहीं है, साधुओं के काम की, ये तो तुम्हारे ग्रस्तियों के काम की है, साधु दुशाले को क्या करे, उनके लिए तो समझो कि कोई कमल हुए तो कोई हर्ज नहीं, और उससे भी और कोई मोटा मतलब चट हो तो भी कोई हर्ज नहीं, किंतु साल दुशाला क्या करे उसको। और इसी प्रकार से थी ये गर्द जो होती है गर्द उसे दुशाले से ज्यादा दाम होता है उसका। समझो कि वो मुलायम होती है और दामी चीज होती है, दृष्ट आदमी तो उसको छू भी नहीं सकता। बतलाया जाता है कि जो गर्भवती जो भेड़ होती है उसको मार कर और उसके भीतर में से जो बच्चा निकाला जाता है उसी के ऊपर के जो बाल है उसकी वो बनती गर्द। ऐसा सुने हैं, देखा नहीं? तो वो तो एक महान हिंसा की चीज। ये कमल जो है इसमें हिंसा नहीं है, क्यों? ये भेड़ की ऊन की है और भेड़ को लोग क्यों पालते हैं कि ऊन के लिए, नहीं तो उसको पड़े कुछ। तो एक प्रकार से इसलिए उसमें हिंसा नहीं है और उसके जो बाल है वो पवित्र माने गए हैं, उस पर मैला कम आता है, दूसरा उसके ऊपर दूसरे परमाणुओं का असर उस पर कम होता है। तो वैरागवान जो पुरुष होते हैं वे तो एक प्रकार से थी उसी तरह उसका मन जाता है, या चद्दर या कम्बल। तो वैराग यदि बाजार में मोल भी गए तो मंगा ले, बाजार में मोल नहीं मिलता। वैराग है, प्रेम है, ये श्रद्धा है, ज्ञान है, ईश्वर की भक्ति है, ये तो ईश्वर की कृपा से, ये चीज तो हृदय से पैदा होती है। इन सब के पैदा होने का स्थान हृदय है और हृदय में पैदा होकर के नेत्रों से झलके वो चीज, चेहरे की मुद्रा पर भी वो चीज आती है, नेत्रों से निकल करके फिर बाहर में फैले। तो जो इसके पात्र होते हैं उन पर उसका असर होता है। तीव्र जो वैराग होता है तो एक बार असर उसका अपात्र पर भी होता है। हमने जब 14 वर्ष की अवस्था के बीच में मंगला जी के दर्शन करे थे और भी साधुओं के दर्शन करे थे, हमारी छोटी उम्र थी तो हम पात्र नहीं थे, तभी हमारे ऊपर असर होता था। तो ऐसे हम अनुमान करते हैं जब हम पात्र नहीं थे और हमारे पर भी उस बैरागवान पुरुषों का असर होता था, 20 लाख पुरुषों का, तो जो पात्र उन पर तो जरूरी होना चाहिए। ये हम अपने पर घटा करके कहते, अपने में ये सब बीती हुई बात आपको बतलाते। पुराने जमाने में भिकारेर में, रतनगढ़ में, चूरू में अच्छे अच्छे साधु आया करते थे, बड़े वृद्ध साधु आया करते। चूरू में एक अनंतानंद जी साधु आते थे, बड़े वृद्ध थे, उनका शरीर खूब लंबा चौड़ा था। ये करीब 50 वर्ष की बात होगी या 45 वर्ष की हो सकती। तो उनके पास जड़ से चित्त के वहां वैराग होता था। हमारे मित्र जो द्वारकादास जी गोविंद का, उनके पास रोज जाते। हमारा काम तो साधुओं के पास जाने का कम पड़ता। हम बकरनाथ जी महाराज के पास समय समय पर जाते थे, वे बड़े वृद्ध पुरुष थे। तो कभी रत्नगढ़ से चूरू या कभी एक प्रकार से बीकानेर से रत्नगढ़ कहीं आते जाते तो समझो कि बस जब चित्त में वैराग आता तभी चल देते। उनके वहां से विदा होने के बाद मालूम पड़ता, उनके खोजों को चिन्ह देकर के लोग दूसरे अनुमान करते, पूछते कि भी क्या महाराज ने कोई बात उठाई। बोले बात तो क्या ही, एक वहां के रत्न के कितने भगत आए थे, उन्होंने कहा था कि महाराज जी आप आओ तो कहा भी देखा जाएगा, तो शायद रत्न चले गए हुए, ये ऐसे अनुमान लगाते थे। बहुत से आदमी तो कामना को लेकर उनके पास जाते और निष्काम भाव से यानी आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से बहुत कम आदमी जाते थे। आजकल के समय के बीच की मत हो समझो कि बहुत आदमी कल्याण के लिए आते। उस समय के वहां हम देखते थे उनके पास में बहुत से भाई लोग जाते हैं, तो कोई तो मुहूर्त पूछने के लिए कि मुहूर्त के लिए, कोई बीमारी की दवाई पूछने के लिए, और कोई एक प्रकार से विदेश जाने के वास्ते कि हम कौन से दिन में जावे। बता भी दिया करते थे, लोगों की श्रद्धा थी कि इनके बतलाए मुहूर्त पर जाने से अवश्य फतेह होती है, इनकी बतलाई दुआई कर लेंगे तो चाहे राग की चुनती हो उसके आराम से हो जाए, ऐसा एक सहकाम भाव रखते थे। तो ये इसको हम कम पसंद करते, इसे सहकाम भाव को हम समय कम पसंद करते थे। हमारे वहाँ अभी तो नहीं, बसेश्वरलाल जी खेमका, गणपत राय जी खेमका, ये लोग उनके पास में जाते थे, मैं भी जाता था, और एक कुंजलाल जी बजाज थे वह जाते थे। एक दिन उन्होंने पूछा कि महाराज आप हमारे को कुछ शिक्षा की बात कहो, तो उन्होंने मेरी तरफ लक्ष्य करके कहा कि इनसे पूछो। बोले महाराज हमारा तो आपके बच्चनों में विश्वास है, ये तो हमारे पास रहते ही आपके बच्चनों में विश्वास है। बोले हमारे बच्चनों में विश्वास कहाँ, हमारे बच्चनों में विश्वास होता तो फिर हमको नहीं पूछता, इनको ही पूछता। एक दिन हम गए वहाँ तो आश्रम में नहीं मिले, तो उनके चरणों के चिन्ह देखे, चिन्ह देखे तो राजपूताना के मट्टी में बाड़ी के जिसको धोरे कहते हैं, तो हम एक प्रकार से थी धोरों में गए उनके खोजों को देख, बहुत एक समझो कि कोई दो तीन फलांग वहाँ एक टीबे के ऊपर धोरे पर बैठे। बालक अवस्था थी हम लोगों की, 20 साल की कमी अवस्था थी। उन्होंने देखा, अरे बोले छोरे कहाँ से आ गए तुम? बोले आगे महाराज आपके पास कैसे आ गए? बोले आपके चरणों के चिन्ह को देख कर। बोले इतनी कड़ी धूप के बीच के वहाँ एक प्रकार से महाराज अभी धूप नहीं है, अभी तो एक थोड़ा दिन ढलने लग गया। मेरे साथ के वहाँ एक राम बल्लभ श्रावगी था, उस राम बल्लभ श्रावगी का कि राम बल्लभ अरे यहाँ इस धोरे के नीचे चिड़ी वगैरह है, मकोड़े है, तो यहाँ थोड़ा दरिया डाल दिया करो, समझा, थोड़ा कीड़ियों को थोड़ा बाजरा का दरिया थोड़ा डाल दिया करो, यहाँ जंगल में ये इनको कूड़ दे भैया, तो इतना काम तो तुम करो, इससे तुम्हारे मन की जो कामना है वो सेहत सिद्ध हो सके। मैंने कहा महाराज मैं भी डाल बकरू यदि मेरे भी मन की कामना सिद्ध हो जा। अरे बोले तुम्हारी कामना बड़ी है, इसकी तो कामना छोटी सी है, इसकी क्या कामना है? बोले इसके ब्याह की इच्छा है, तो इसकी एक प्रकार से वो सिराही ब्याह हो जाएगी यही तो बात, और तुम्हारी कामना है मुक्ति की, वो बड़ी कामना है, वो एक प्रकार से थी, क्योंकि महाराज बड़ी कामना के नहीं हो क्या? और नहीं हुई तो हमारे पार्टनर नहीं थे, और तुम्हारी कामना बड़ी कामना ये या गिरी नगर में ये दलिया डालने से नहीं होगी। तो उसके बाद उसका जल्दी विवाह हो गया, ये हमको मालूम नहीं कि उसने वो किरी नगरी में दलिया डाया कि नहीं डाया, पर हमारे सामने बात उसको कही और उसने स्वीकार की थी, संभव है कि जरूर वो डाया हो, किंतु उसकी सगाई होगी विवाह हो गया ये मुझको मालूम। ऐसी बात उनकी हम देखा करते थे कि वे एक प्रकार से दे दिया करते थे। एक भाई जो है उनके पास में गया, ये हमारे सामने की बात नहीं सुनी हुई बात है, वहां जाकर के वे गप लगाने लगे कि महाराज अमुक आदमी के तो 2 झारमण बाजरा पड़े, उसके तो 10 झार का लाभ हो गया, दूसरे बोले उसके अपने मोट पड़े हैं बाजरा पड़े है उसके भी 5 झार का फायदा है। इस प्रकार से उनके सामने बात चलाओ कि देख रहे क्या जवाब, बोले अभी फायदा तो है जो निकाल ले वो अपना है, जब तो वो चीज पड़ी है तो उसमें एक प्रकार से मन का ही तो धन है कि फायदा हो गया। बोले महाराज बाजार को देख कर कहते हैं, बोले बाजार को क्या है, जो नफा निकाल ले वो ही अपना है। तो उनका ये अर्थ लगाया कि अब बाजार गिरेगा, क्योंकि ये भाव रहने का नहीं, नफा निकाल ले हुई अपना नहीं निकाले तो नहीं है। तो उन्होंने जाकर बाजार के बीच के वहां बाजरा मोट अपने देश में होते है ना, उसको अगाऊ से सौदा करके बेच लिया कि बाजार तो एक प्रकार से गिरेगा और पहले इसको बिक्री कर दे तो उसको फायदा हो जाएगा। सौदा करने वाले लोग थे और उसी रात्रि के वहां फिर वर्षा हुई और दूसरे दिन बाजार गिर गया, भाव गिर गया। तो सब बोले देखो महाराज ने तो पहले ही कह दिया, तो कोई ऐसे बात में चुप भी जाया करते थे। मैं किसी को आपने कोई पुण्य धर्म करने के लिए किसी काम में रुपया लगाने के लिए पढ़ाई नहीं कहते, इस विषय के बीच के वहां तो एक रूप से उनका जो है खूब वैराग था। हमारे चूरू के बीच के वहां घनश्याम दास जी मंत्री और उनके भाई दो भाई में थे उस जमाने में, पुराने जमाने के बीच के वहां एक का नाम बद्रीनारायण जी था, एक का नाम घनश्याम दास जी। ये सदा के शेर थे, बड़े आदमी थे। अब तो उनके लड़कों के पास तो इतना रुपया नहीं रहा, मामूली हो गए साधारण। उनके पास में रुपये भी थे और विदेशों में माने कलकत्ते आदि में दुकानें चलती थी, लखपति थे सदा के और पंत थे, वे भी उनके पास में जाया करते थे। और उनकी एक बागल लगाई हुई थी कि कोई वक्त के वहां गाया के काम में आए। तो 56 की साल हो शायद, पूरा साल हमारे ख्याल में नहीं है, अनुमान से यह 56 की साल 1956 उनके पास में गए थे। तो लोगों ने पहला से कहा कि महाराज इनके 10,000 मुण की बागर है, ये यदि गाया के वास्ते खोल देवे तो झाना गाया बच सकती, और आप यदि संकेत भी कर देंगे तो आपकी बात को नहीं चढ़ाएंगे, ऐसा हमारे विश्वास है। ठीक है, वह गए, पूछा कि घनश्याम या बद्रू दोनों में कोई आदमी था कि बद्रू तुम्हारे यहाँ घास की बागर सुनी? हाँ बोले महाराज है, बागर भी बहुत बड़ी सारी है। और वो किसके लिए? बोले गाया के लिए है। तो बोलो गाया के लिए? तो भैया गाया तो भूख मरती है, समझा? फिर क्या करोगे उसके लिए? तुम्हारे जैसे तो खोल दो भैया। बोले महाराज अभी जो है समय नहीं आया, अभी जब बहुत ज्यादा काल आ जाएगा, माने समय जो है अभी दूर है, अभी समय नहीं आया, इस वास्ते थोड़ा देरी से खोलेंगे, और है तो गायों के लिए। अरे बोला बद्रू समय तो आ गया भैया, और क्या आएगा, समय तो आ गया। मैं बोले महाराज कि जो ठहर कर खोलना, बोले तुम्हारी मर्जी। आ गया घर के ऊपर, रास्ते में लोगों ने कहा कि आप बहुत ही गलती करी, कि महाराज का तो हुक्म होता ही नहीं, और ये आपके लिए हुक्म हो गया था तो आपको कह देना था कि महाराज कल खोल देंगे, बोलो तो आज ही खोल देना, तो वे खुश होते और तुम्हारे लिए बड़ा मंगल होता, बहुत ही तुम्हारा इसमें हित होता। घर पर आए, घर पर भी वाइस चला गई, बोले बात तो ठीक कहते हैं। फिर दो एक दिन के बाद फिर गई, जाके महाराज आप कहो तो बागर खोल दें। बोले हम क्यों कहें, तुम्हारी मर्जी हो तो खोल, हमारे को भी क्या करते, समझा? तुम जब समय आओ तब खोल। तो दूसरे लोगों ने कहा आपकी वो बात तो गई, क्या है मौके पर तो तुमने खोला नहीं, और थोड़ा दिन के बाद ही वो मर गई। माने एक प्रकार से भाव ये था कि इस समय तो आ गया खोल दे, ठीक है फिर मर कर कर खोलोगे, फिर तो लोग ही भलाई खोलोगे, तो उनका श्रेय तो फिर लोगों को ही होगा। और ये बात तो अपने रत्नगढ़ की है, और ये नल्ला जी मुहाड़ के भी आते हैं, बहुत उनके पिता की बात, उनके पिताजी इसको गए थे बूढ़े, उनका नाम विलासराज, विलासराज जी नाम था,
और बोला महाराज आप सब हुक्म लेने के लिए आए हैं, कलकत्ते जाने का विचार कर। बोले क्यों? कि महाराज ये पग में कीड़ी निग्रह हो गया, सफेद सफेद कीड़ियां पग के नीचे से निकलती है, सारा पग जो है इसमें फैल गई। वो तो अब डॉक्टरों को दिखलाया गया तो डॉक्टरों ने यही बात कही कि ये पग ऐसा कटाना होगा और कोई उपाय नहीं इसका, तो वहां जाकर के पग कटावाएंगे। अरे बोले एकदम से भोला आदमी, कभी पग कटाया करे? अरे कीड़ी तो एक प्रकार से बाजरे से खुश होया करे, कीड़ी को तो बाजरे का बाटिया बड़ा बड़ा करके देना चाहिए। तो उसे बाजरे का बाटिया बड़ा बड़ा करके पैरों का बल देना शुरू कर दिया, उसके बांस से कीड़िया निकलने लगी, तो उसकी गंध से सब कीड़िया निकल गई और वो खाली हो जाने से वो घाव अपना आप सूख गए। तो एक प्रकार से नहीं तो उनको पकड़ना पड़ता।
नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
नारायण
श्रीमन नारायण नारायण
नारायण
श्रीमन नारायण
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 श्यावर रामचंद्र की जय, मोरुगमन से वाले की जय।